ये आकाशवाणी दिल्ली है। आम आदमी पार्टी आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस से गठबंधन नहीं करेगी। आम आदमी पार्टी के प्रतिनिधि मंडल ने मतदाता सूची मुद्दे पर मुख्य निर्वाचन आयुक्त से मुलाकात की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार प्रदान किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिल कवि सुब्रमण्य भारती की रचनाओं की संग्रह का विमोचन किया और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ने एक महिला के शरीर से लगभग 10 किलोग्राम के ट्यूमर की सर्जरी कर बड़ी उपलब्धि हासिल की। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी कांग्रेस से गठबंधन नहीं करेगी। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि पार्टी दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस से कोई गठबंधन नहीं कर रही है। इस बारे में अधिक जानकारी देते हुए पार्टी सांसद संजय सिंह ने कहा कि पार्टी ने हर बार की तरह इस बार भी अकेले ही विधानसभा चुनाव लड़ने का निर्णय लिया है।
पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल का स्पष्ट तौर पे निर्णय है कि हम लोग दिल्ली में चुनाव में कोई भी गठबंधन विधानसभा के अंदर कांग्रेस पार्टी के साथ नहीं कर रहे हैं और अकेले चुनाव लड़ेंगे। हमने 3 बार लगातार बीजेपी को यहां बुरी तरीके से शिकस्त दी है, इस चुनाव में भी भाजपा को बुरी तरीके से हराएंगे।
दिल्ली में मतदाता सूची के मुद्दे पर आज आम आदमी पार्टी के एक प्रतिनिधि मंडल ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार से मुलाकात की। प्रतिनिधि मंडल ने श्री कुमार को एक पत्र सौंपकर चुनावी प्रक्रिया की शुचिता बनाए रखने का आग्रह किया। किसी भी विधानसभा क्षेत्र में मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से गैर कानूनी प्रक्रिया से न हटाने का भी अनुरोध किया गया। प्रतिनिधि मंडल ने मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी, पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल, सांसद संजय सिंह, राघव चड्ढा और अन्य नेता शामिल थे। मीडिया से बातचीत में श्री केजरीवाल ने आरोप लगाया कि कई विधानसभा क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने मतदाता सूची से मतदाताओं के नाम काटने के लिए आवेदन दिए हैं।
हमने इलेक्शन कमीशन के सामने 3000 पेजेस के सबूत रखे कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के मौजूदा लोगों के वोट कटवाने का षड्यंत्र रच रही है, और ये जो वोट कटवाए जा रहे हैं ये अधिकतर गरीब लोगों के, एससी लोगों के, दलितों के, पूर्वांचली लोगों के, जो कि झुग्गियों में रहते हैं, कच्ची कॉलोनियों में रहते हैं। चुनाव आयोग ने भरोसा दिलाया है कि जिन लोगों ने फर्जी डिलीशन के लिए अप्लाई किया है उनके ऊपर एफआईआर करने के ऊपर चुनाव आयोग विचार करेगा।
दिल्ली भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आज निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन क्षेत्र में ऑटो चालकों से संवाद किया। इस कार्यक्रम के बाद मीडिया से बातचीत में श्री सचदेवा ने बताया कि ऑटो चालक पिछले 10 वर्षों की तरह भ्रष्टाचार का सामना कर रहे हैं। उन्होंने आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाते हुए कहा कि पार्टी ने पिछले 10 वर्षों में ऑटो चालकों को सिर्फ गुमराह किया है। दिल्ली पुलिस ने वर्ष 2027 तक दिल्ली को नशा मुक्त बनाने के अभियान के अंतर्गत पंजाबी बाग में सर्वोदय कन्या विद्यालय नंबर 2 में नशे के विरुद्ध जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में आसपास के अन्य विद्यालयों के विद्यार्थी भी शामिल हुए। कार्यक्रम में अश्मिता थिएटर ग्रुप ने नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत किया, एक पेंटिंग प्रदर्शनी लगाई और छात्रों को नशा मुक्त भविष्य के लिए ई शपथ भी दिलाई गई। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में 45 लोगों को विभिन्न श्रेणियों में मूल स्तर पर सामुदायिक क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2024 प्रदान किए। ओडिशा और त्रिपुरा को सबसे अधिक 7-7 पुरस्कार मिले हैं। इस अवसर पर राष्ट्रपति मुर्मू ने सभी पुरस्कृत व्यक्तियों को उनके सराहनीय प्रयास के लिए बधाई दी और कहा ये पुरस्कार उन्हें पंचायत के प्रति उनकी प्रतिबद्धता और प्रयासों के लिए दिया गया है। राष्ट्रपति ने कहा कि लगभग 64% नागरिक ग्रामीण हैं, इसलिए भारत को एक मजबूत और विकसित राष्ट्र बनाने के लिए गांव और गांववासियों की भूमिका महत्वपूर्ण है।
गांव में अधिकांश विवाद ऐसे होते हैं जो स्थानीय स्तर पर सुलझा जा सकता है, लेकिन फिर भी लोग कोर्ट कचहरी जाते हैं। इससे न केवल उनका धन और समय नष्ट होता है बल्कि कोर्ट और प्रशासन पर अनावश्यक दबाव बढ़ता है। मेरी आपसे अपेक्षा है आप ग्रामवासियों के आपसी झगड़ों का पंचायत के स्तर पर ही समाधान करें। आपके पास इसके लिए अधिकार भी है और ये आपका कर्तव्य भी है।
गरीबी उन्मूलन, स्वास्थ्य, बाल कल्याण, जल संरक्षण, स्वच्छता, बुनियादी ढांचे, सामाजिक न्याय, शासकीय व्यवस्था और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में पंचायतों के प्रयासों और उनकी भूमिका को मान्यता और बढ़ावा देने में राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2024 का बहुमूल्य योगदान होता है। 42% पुरस्कृत पंचायतों का प्रबंधन महिलाएं कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सुब्रमण्य भारती का समृद्ध भारत और प्रत्येक व्यक्ति के सशक्तिकरण का दृष्टिकोण आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा। प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में तमिल कवि और स्वाधीनता सेनानी सुब्रमण्य भारती की संपूर्ण रचनाओं के संग्रह का विमोचन किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि संग्रह का विमोचन करते हुए उन्हें सम्मान महसूस हो रहा है।
आज देश महाकवि सुब्रमण्य भारती जी की जन्म जयंती मना रहा है। मैं सुब्रमण्य भारती जी को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूँ, उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। भारत की संस्कृति और साहित्य के लिए, भारत के स्वतंत्रता संग्राम की स्मृतियों के लिए और तमिलनाडु के गौरव के लिए एक बहुत बड़ा अवसर है।
प्रधानमंत्री ने इस दिन को देश की संस्कृति और साहित्य, भारत के स्वतंत्रता संग्राम की स्मृतियों और तमिलनाडु के गौरव के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण बताया। उन्होंने कहा कि महाकवि सुब्रमण्य भारती की रचनाओं और कृतियों को प्रकाशित करना एक महान सेवा है।
आज गीता जयंती का पावन अवसर भी है। श्री सुब्रमण्य भारती जी की गीता के प्रति गहरी आस्था थी और गीता ज्ञान को लेकर उनकी समझ भी उतनी ही गहरी थी। उन्होंने गीता का तमिल में अनुवाद किया, उसकी सरल और सुगम व्याख्या भी की।
प्रधानमंत्री ने कहा कि आधुनिक समय में स्वामी विवेकानंद की संग्रहित रचनाएं और बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के लेखन तथा भाषण समाज और शिक्षा जगत के लिए बहुत उपयोगी साबित हुए हैं। नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स ने एक महिला के शरीर से करीब 10 किलोग्राम के ट्यूमर को सर्जरी कर बड़ी उपलब्धि हासिल की है। 49 वर्षीय रोगी के शरीर में ये ट्यूमर काफी समय से था, जिसे चिकित्सकों की कुशल टीम ने लगभग 10 घंटे तक चली सर्जरी के बाद बाहर निकाला। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में एम्स में डॉक्टर एमडी रे ने बताया कि ट्यूमर काफी बड़ा था और शरीर के कई अंगों में फैल गया था। इसके कारण मरीज को खाने पीने में भी परेशानी हो रही थी और उसका वजन भी 3 महीने में लगभग 15 किलो तक कम हो गया था।
The operation is the only way. So we had taken this kind of challenge. We have resected the multiple sites of the small bowel, large bowel also, even urinary bladder, and we reconstructed that thing. And after complete removal of this tumor, so presently I believe in this situation we are unable to operate this patient. But at present, after removal of the tumor, we believe patient will survive more than 10 years minimum.
दिल्ली में आगामी विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के अकेले चुनाव लड़ने के फैसले पर भाजपा ने कहा है कि आम आदमी पार्टी भलीभांति जानती थी कि वो गठबंधन करें या अलग अलग चुनाव लड़ें, उनकी हार निश्चित है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों ही पार्टियां एक दूसरे को कमजोर दिखाने का खेल खेल रही हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर योगेश सिंह ने विश्वविद्यालय छात्र संघ डूसू के नव निर्वाचित पदाधिकारियों के साथ आज बैठक की। इस अवसर पर श्री सिंह ने आशा व्यक्त की कि छात्रों के प्रतिनिधि विश्वविद्यालय के साथ मिलजुल कर विद्यार्थियों के हित में कार्य करेंगे। उन्होंने डूसू पदाधिकारियों से कहा कि अब सभी को विरूपण के लिए उदाहरण बनना है, ताकि कोई विश्वविद्यालय की दीवारों को गंदा न कर सके। इस विषय पर सभी छात्र संघ पदाधिकारियों ने कुलपति को आश्वासन दिया कि वो गंभीरता से काम करेंगे। बैठक में कुलपति और डूसू पदाधिकारियों के अलावा प्रोक्टर प्रोफेसर रजनी अब्बी, दक्षिणी परिसर के निदेशक प्रोफेसर प्रकाश सिंह सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज नया भारत मोदी का विजन और विकास नामक पुस्तक का विमोचन किया। ये पुस्तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकास कार्यों और योजनाओं तथा उनके विजन पर आधारित है। मंत्री महोदय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 10 वर्षों में करीब 27 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया है।
माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से पिछले 10 साल ने भारत में प्रगति की है, जिस गति के साथ में प्रगति की है, वो निश्चित रूप से पूरे विश्व को उसने चमत्कृत किया है और पूरा विश्व का भारत की तरफ देखने का नजरिया बदला है।
इस अवसर पर प्रसार भारती के अध्यक्ष नवनीत सहगल ने विभिन्न सरकारी योजनाओं पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि जनधन खाते देश के लोगों के लिए वित्तीय समावेशन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। दिल्ली के मंडी हाउस में रविंद्र भवन परिसर में पुस्तकायन पुस्तक मेला जारी है। साहित्य अकादमी के इस मेले में विभिन्न प्रकाशक अलग अलग भाषाओं में पुस्तकें पाठकों के लिए उपलब्ध करा रहे हैं। एक रिपोर्ट।
10 दिनों तक चलने वाले इस मेले में पुस्तक प्रेमी बड़ी संख्या में आ रहे हैं। अलग अलग प्रकाशकों के स्टॉल पर काफी चहल पहल है और लोग अपनी पसंद के लेखकों और कवियों द्वारा लिखी गई किताबें खरीद रहे हैं। पठन पाठन में लोगों की रुचि बढ़ाने के लिए पुस्तक मेले में कई सत्र भी आयोजित किए जा रहे हैं। इनमें हिंदी कवि सम्मेलन, बहुभाषी कविता पाठ, मुशायरा, लघु कथा वाचन और विभिन्न विषयों पर चर्चाएं शामिल हैं। ये मेला हिंदी, मैथिली, असमिया, डोगरी, बोडो, तेलुगु, मलयालम और पंजाबी सहित अन्य भारतीय भाषाओं में लिखी गई किताबें लोगों के लिए उपलब्ध करा रहा है। 15 दिसंबर तक चलने वाले इस मेले में प्रवेश बिल्कुल निशुल्क है और लोग सुबह 11 बजे से रात 8 बजे तक मेले में जा सकते हैं। प्रादेशिक समाचार के लिए सकलैन अख्तर।
प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। केंद्रीय पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा है कि गुजरात के लोथल में बनने वाला राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर अभियांत्रिकी का एक उत्कृष्ट नमूना है।
ये समुद्री क्षेत्र में परिवहन के विकास और भविष्य में इससे जुड़े समाधान खोजने में सहायक होगा। नई दिल्ली में भारत समुद्री विरासत सम्मेलन 2024 को संबोधित करते हुए श्री सोनोवाल ने कहा कि भारत की समुद्री विरासत ने न केवल देश के बल्कि विश्व के इतिहास को भी प्रभावित किया है। उन्होंने कहा कि ये सम्मेलन वैश्विक समुद्री व्यापार और संस्कृति में भारत के योगदान को रेखांकित करता है। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि भारत का समुद्री कौशल इसकी सांस्कृतिक विरासत और आर्थिक समृद्धि का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि सम्मेलन में समुद्री क्षेत्र में भारतीय कौशल पर चर्चा हुई। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि भारत का समृद्ध समुद्री इतिहास है और समुद्र के क्षेत्र में विस्तृत ज्ञान है। श्री मांडविया ने कहा कि ये ज्ञान वैश्विक समुद्री संस्कृति को आकार देगा। प्रादेशिक समाचार के लिए समाचार कक्ष से आकर्षिता सिंह।
विश्व भर में आज गीता जयंती मनाई जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव में आज हरियाणा के कुरुक्षेत्र में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गीता महोत्सव के अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि इस पावन पर्व को भारतीय संस्कृति, अध्यात्म और परंपरा का मार्गदर्शन करने वाले ग्रंथ की जयंती के रूप में मनाया जाता है। प्रधानमंत्री ने भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करते हुए आशा व्यक्त की कि भगवद गीता सभी को कर्मयोग का मार्ग दिखाएगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने वैश्विक शांति बहाल करने के लिए दुनिया भर की सरकारों और उद्योगों के लिए मिलकर काम करने की आवश्यकता पर बल दिया है। नई दिल्ली में आज वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए दशकीय प्राथमिकताएं विषय पर वैश्विक आर्थिक नीति मंच में उपस्थित लोगों को वित्त मंत्री ने संबोधित किया। राष्ट्रीय राजधानी में वायु गुणवत्ता एक बार फिर खराब श्रेणी में पहुंच गई है। आज शाम 7 बजे औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 203 दर्ज किया गया। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार शहर के कुछ क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता सूचकांक 250 को पार कर गया। दिल्ली में आज मौसम सामान्य रहा, हालांकि शाम के समय ठंड महसूस की जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, वहीं न्यूनतम तापमान 4.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान दिल्ली और आसपास के इलाकों में सवेरे और रात के समय हल्का कोहरा छाए रहने का अनुमान है। वहीं कल का अधिकतम तापमान 23 डिग्री और न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। आम आदमी पार्टी आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस से गठबंधन नहीं करेगी। आम आदमी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल ने मतदाता सूची के मुद्दे पर मुख्य निर्वाचन आयुक्त से मुलाकात की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार प्रदान किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिल कवि सुब्रमण्य भारती की रचनाओं की संग्रह का विमोचन किया और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ने एक महिला के शरीर से लगभग 10 किलोग्राम के ट्यूमर की सर्जरी कर बड़ी उपलब्धि हासिल की। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।